शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओम ओम सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्म मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे
ओम शांति, ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। आज सतगुरु बाबा ने समय की पहचान दी है। अभी कौन सा समय चल रहा है? ये धर्म ग्लानी का समय चल रहा है, गीता एपिसोड, गीता युग चल रहा है, महाभारत सामने खड़ा है, तो जरूर भगवान भी इस सृष्टि पर आ चुके हैं। वो महाभारत तो केवल दो सेनाओं का दिखाते हैं, पांडव और कौरव, लेकिन आज कहेंगे कि सारी दुनिया में, घर घर में महाभारत है, ऐसे ना, भाई भाई में झगड़े हैं, भाई भाई में एक दो को देख नहीं सकते, ऐसी स्थिति आज दुनिया में हो गई है। विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति बन चुके हैं, लेकिन दूसरी ओर विनाश काले प्रीत बुद्धि भगवान के बच्चे भी हैं, जो भगवान को याद करते हैं, उनसे प्रीत रखते हैं, उनकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, उनकी श्रीमत का पालन कर रहे हैं, तो अवश्य उनकी जीत होगी। और जो विपरीत बुद्धि है भगवान से भी और ज्ञान से भी, तो उनका तो विनाश होगा ही। तो तुम बच्चों की प्रीत बुद्धि होने कारण विजय है। तो किस किस बात पर विजय पाते हो इस समय? पहले तो अपने कर्म इंद्रियों पर विजय पाते हो, फिर विकारों पर विजय पाते हो, फिर भगवान का दिल जीतते हो, और फिर विश्व की राजाई भी लेते हो। तो बाबा कहते हैं तुम पवित्र बनते हो, प्रीत बुद्धि बनते हो, तो फिर तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। इस पुरानी दुनिया में तुम नहीं रह सकेंगे, तो फिर तुम्हारे लिए मैं नई दुनिया भी बनाता हूँ। अकेला तो नहीं बनाऊंगा, तुम्हारी मदद से ही बनाऊंगा। तो आज की सारी मुरली है, गीता एपिसोड चल रहा है, ये गीता का युग चल रहा है, और दो सेनाएं हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश होना है, और दूसरी तरफ विनाश काले प्रीत बुद्धि, जो भगवान से प्रीत रख विजयी बनते हैं। तो सुनते हैं बाबा के माँ वाक्य। आज तारीख भी बड़ी वंडरफुल है, 12/12/24, 12/12/24 है आज। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं, इसमें अथाह कमाई है, अथाह कमाई है। वो जो पढ़ाई है वो तो चलो एक जन्म की कमाई पाते हैं, पर इस पढ़ाई से तो 21 जन्मों की कमाई हो जाती है। इसमें अथाह कमाई है, इसलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। लिंक कभी न टूटे माना एक दिन भी मुरली मिस न हो। अगर एक दिन भी मुरली मिस की तो लिंक टूट गई ना, उस दिन की तो लिंक टूट गई बाबा से, क्योंकि मुरली सुनी नहीं, पढ़ी नहीं। तो बाबा कहते हैं कोई भी दिन ऐसा न जाए जो मुरली न सुनो न पढ़ो, ऐसा न हो। तो लिंक कभी न टूटे। प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जब हम उनको कहते ना, अभी वही गीता एपिसोड चल रहा है और धर्म ग्लानी का समय है, वही गीता का युग चल रहा है, अभी विनाश आया कि आया, तो हंसते हैं। तो जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? उत्तर, जब तुम कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। वो तो यही कहेंगे ना, अभी तो 40,000 साल पड़े हैं, अभी तो कलयुग बच्चा है, अभी थोड़ी विनाश होना है। लेकिन अभी नहीं कह रहे हैं, पहले तो बहुत कहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां तो बस विनाश 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 ही कहती है। तो फिर बाबा ने कहा कि अभी उनको विनाश नहीं कहो, उनको स्थापना कहो, उनको कहो नई दुनिया आनी है, नया सतयुग आना है, उसके लिए पुरुषार्थ करो। विनाश की बात पहले कह देंगे तो बाबा कहते या तो हंसेंगे या तो उस बात को उड़ा देंगे। तो बाबा कहते हैं, जब तुम कहते हो अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। तुम जानते हो बाप यहां बैठे तो नहीं रहेंगे, भगवान भी आ गया है, पढ़ा रहा है नई दुनिया के लिए, वो कब तक बैठा रहेगा? उसको भी तो वापस अपने घर जाना है और हम बच्चों को साथ ले जाना है, तो कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? तो बाप यहाँ, तुम जानते हो बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। और जो सतयुग की आत्माएं हैं, त्रेता की आत्माएं हैं, दोनों को युगों की आत्माओं को पावन तो बनाएंगे। तो बाबा कहते उनका ये धंधा ही है, उनकी ये ड्यूटी है पावन बनाना। बाप की ड्यूटी है पावन बनाना, जब पावन बन जाएंगे तो ये पुरानी दुनिया विनाश होगी, नहीं आएगी। ये लड़ाई है ही विनाश के लिए, ये महाभारत लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छीछी सृष्टि पर आ नहीं सकते हो। यहाँ थोड़ी रहेंगे कलयुगी छीछी सृष्टि पर, जबकि हम देवता बन रहे हैं, पावन बन रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे समझते हैं हम बहुत बेसमझ बन गए थे। माया रावण ने बेसमझ बना दिया था, ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जबकि नई सृष्टि स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना। बाप करता है पर किसके द्वारा करता है, किसको किससे करवाता है? ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा। तो बाबा कहते हैं क्योंकि करण करावन हार तो बाप है ना, एक ही है जो करता है और कराता है, करण हार भी है और करावन हार भी है, वो एक ही है। पहले किसका नाम आएगा, करण हार का आएगा या करावन हार का आएगा? हाँ, शिव बाबा करण हार है, फिर जिनसे करवाता है उनका फिर दूसरा नंबर आएगा। तो बाबा कहते पहले किसका नाम आएगा, जो करता है उसका पहले नंबर आएगा, फिर जिस द्वारा कराते हैं तो करण करावन हार कहा जाता है। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, ये भी बच्चे जानते हैं। हमारी जो नई दुनिया है, हमारी नई दुनिया, ये पुरानी दुनिया हमारी नहीं है, हमारी जो नई दुनिया है जो हम स्थापन कर रहे हैं, शिव बाबा कह रहे हैं जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। वो हमारी दुनिया है, बाबा स्थापन कर रहे हैं, वो है, उनका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में ही देवी देवताएं होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता है। सतयुग त्रेता में देवी देवताएं कहे जाएंगे, द्वापुर से तो फिर मनुष्य बन जाते हैं, उनको देवी देवता तो नहीं कहेंगे। किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता है, वहां मनुष्य होते नहीं, सतयुग में मनुष्य नहीं होते हैं, सब देवताएं। यहाँ भी देखो कलयुग की दुनिया में भी कईयों के जो पहले नाम होते थे, आजकल तो बदल गया सब। पहले जो नाम होते थे वो उसके पीछे देवी जरूर आता था, शांति देवी, प्रेमा देवी, दुर्गा देवी या देवी देवी, और पुरुष के नाम के पीछे देव आता था, लाल देव, राम देव, ये देव देव। फिर तो धीरे धीरे सब बदल गया। तो बाबा कहते हैं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। अभी तुम बच्चे स्मृति में आए हो, हाँ तुमको स्मृति आई है कि बरोबर हम देवी देवता थे। निशानियां भी है देवताओं की, इस्लामी, बोधि, क्रिश्चियन आदि सबकी अपनी अपनी निशानी है। हमारा जब राज्य था तो और कोई नहीं था, अभी फिर और सभी धर्म है, हमारा देवता धर्म है नहीं। हाँ, उस समय और कोई धर्म नहीं था, केवल देवता धर्म था। अब और सब धर्म है, देवता धर्म नहीं है। गीता में अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि और विनाश काले प्रीत बुद्धि। ये गीता के ही शब्द हैं। विनाश तो इस समय ही होना है, तो बाप आते भी हैं संगम युग पर, जबकि चेंज होती है, परिवर्तन आता है, आना होता है तब भगवान आते हैं, जबकि चेंज होती है। बाप तुम बच्चों को बदले में, हाँ चेंज जब होती है, तुम भगवान के मददगार बनते हो, तो बाप तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। विनाश के बाद तो सब कुछ नया ही होगा, तो बाप तुमको सब नया देते हैं इस विनाश के बदले में। वो सोनार भी है, धोबी भी है, बड़ा व्यापारी भी है। बिरला ही कोई बाप से व्यापार कर ले, कोई बिरला ही करेगा ना, भगवान से व्यापार कौन करेगा, कोई बिरला ही। बिरला ही कोई भगवान से व्यापार करे, इस व्यापार में तो अथाह फायदा है, भगवान से व्यापार करने में बहुत फायदा है, पढ़ाई में फायदा बहुत होता है। महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है। ये जो पढ़ाई है, बाबा कई बार कहते हैं ये कमाई है, ये चढ़ाई है, ये लड़ाई है, वह शब्द इसके साथ भी मैच होते हैं। तो महिमा भी की जाती है कि पढ़ाई कमाई है, वो भी जन्म जन्मांतर के लिए कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी चाहिए ना, और पढ़ाना भी बहुत सहज है, और पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ। बाबा कहते कोई मुश्किलात नहीं है इस पढ़ाई में, और पढ़ाइयों में तो कितनी बातें होती है, और खास करके जब साइंस का सब्जेक्ट लेते हैं तो कितने उनके लिए प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो कितनी चीजें चाहिए। और इसलिए बाबा कहते हैं यहाँ तो पढ़ाई भी बहुत सहज है, पढ़ाता भी बहुत सहज हूँ, कोई और तामझाम नहीं है। सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी। पढ़ाई आती रहेगी माना मुरली मिलती रहेगी, तो फिर कभी लिंक नहीं टूटेगी। ये है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बाबा कहते हैं आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विजयन्ति। तुम जानते हो इस समय मनुष्य एक दो को, हाँ विनाश काले विपरीत बुद्धि होंगे तो क्या करते हैं, एक दो को काटते मारते रहते हैं, है ना, कलयुग अंत में काटना मारना यही होता है। इन जैसा क्रोध व विकार और कोई भी होता नहीं, विकार के कारण हाँ मारते काटते है ना। तो बाबा कहते और कोई होता नहीं क्रोध विकार जैसा। ये भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा, तो बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियां हो। भगवान उवाच, बाप कहते हैं बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, तुमको सताते हैं लेकिन तुम प्रतिज्ञा करो, हम विकार में नहीं जाएंगे। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब विकार में नहीं जाओ, मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ, तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब विनाश का काल है ना, किसकी भी सुनते नहीं है आपस में, यहाँ कैसे लड़ रहे हैं, कितना भी कहो कि अभी ये ऐसे नहीं करो, युद्ध नहीं करो, पर सुनते ही नहीं है किसी की, किसकी भी सुनते नहीं है, लड़ते ही रहते हैं। हाँ, रोज कितना समाचार लड़ाई का भी आता है, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको कहते हैं शांत रहो, परंतु शांत रहते ही नहीं है। अपने बच्चों आदि से छुड़ाकर लड़ाई के मैदान में जाते हैं, जाना पड़ता है ना। तो अगर जो युद्ध योद्धे हैं तो अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं ना युद्ध के स्थान पर। तो अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। घर तो फिर उनको याद आता है, परिवार वाले भी याद करते हैं, पिता को बच्चे याद करेंगे, पत्नी पति को याद करती है, उसको मालूम है वो गया हुआ है युद्ध के मैदान में। तो अपने बच्चों आदि से बिछड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य मरते ही रहते हैं, मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है इस समय। अगर वैल्यू है, महिमा है, तो किन की है? देवी देवताओं की। बस उनकी वैल्यू है, उनकी महिमा है। आज के मनुष्यों की क्या वैल्यू? हाँ, ये शरीर भी का इसका भी जैसे कोई वैल्यू नहीं। अभी तुम यह बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, लक्ष्मी नारायण जैसा, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है। तुमको अभी बाप पढ़ा रहे हैं, कितनी ऊंच पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में, कौन है हम सभी पढ़ने वाले, बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल ही तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान ही हूँ, शिव बाबा तो कभी नहीं बने तमो प्रधान। तो बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बनकर आया हूँ। विचार करो, हम कितने छीछी बन गए हैं ना। सर्वेंट का काम क्या है? सफाई करना ना। तो हम कितने छीछी बन गए हैं, बाप ही हमको वाह वाह बनाते हैं। भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंच बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ, अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाप कहते हैं, मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नर्कवासी कैसे बने? किसने बनाया? गायन भी है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, प्रीत बुद्धि विजयंती। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, विनाश का काल तो है ही है, परंतु जितना जितना शिव बाबा से प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात प्रीत बुद्धि रहना माना अर्थात बहुत याद करेंगे, उतना तुम्हारा ही फायदा है। लड़ाई का मैदान है ना, कोई भी ये नहीं जानते कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो फिर कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध तो कोई है नहीं। इस समय कौरव संप्रदाय भी है, पांडव संप्रदाय भी है, लेकिन युद्ध तो कोई है नहीं। पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं। तो हम सब बाप को जानते हैं, बाप की श्रीमत पर चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं, पांडव उनको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, बाप से प्रीत बुद्धि है। और कौरव उनको कहा जाता है जो बाप से विपरीत बुद्धि है। तो अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है, प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बुद्धि से काम लेना है। अभी दुनिया कितनी बड़ी है और सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। छोटा झाड़ होगा ना, वो झाड़ फिर बड़ा होता है, कोई भी झाड़ पहले छोटा होता है फिर वो बड़ा होता है, तो मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है ये भी कोई समझते नहीं है। ये उल्टा झाड़ है, गीता में है ऊर्ध्व मूल अध शाखा। ऊर्ध्व माने ऊपर की ओर मूल है, शिव बाबा बीज ऊपर है, अध शाखा नीचे शाखाएं हैं, तो ये उल्टा झाड़ है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मनुष्य सृष्टि रूपी यह उल्टा झाड़ कैसे है ये भी कोई समझते नहीं है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है, वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना। कल्प वृक्ष तो कहते गीता में भी ये शब्द है कल्प वृक्ष, लेकिन बाबा कहते वृक्ष का नॉलेज भी चाहिए ना। और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत इजी है, झट बता देंगे। एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना स्कूलों में, पढ़ते हैं बॉटनी पढ़ते हैं, सारे झाड़ों का ही उसमें ज्ञान है, कौन सा झाड़ किसका है, कैसे है, कब बीज डालना होता है, कब फल निकलता है, कैसा उसका बीज है, कैसा फल है, कैसे पत्ते हैं, वो ही सब सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं और वृक्षों का नॉलेज तो बहुत बहुत ईजी है, झट बता देंगे। इस वृक्ष का नॉलेज भी ऐसा ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है इस कल्प वृक्ष को समझना भी, परंतु ये है ह्यूमन वृक्ष, ये मनुष्यों का वृक्ष है। एक भाई ने अपना अनुभव सुनाया, जब मैं पहली बार आया कल्प वृक्ष का चित्र देखा तो उसमें दिखाए पत्ते दिखाए ना, धर्म के पत्ते पत्तों शाखाएं और पत्ते, तो उसमें मनुष्य दिखाया है, तो कहा ऐसे मनुष्य पत्ते मिसल है। उसको आश्चर्य लगा कि हाँ पत्ते मिसल है, तो क्यों नहीं, सब पत्ते मिसल ही तो है इस दुनिया में, कितना बड़ा वृक्ष हो गया है एक एक मनुष्य माना वो पत्ता। तो बाबा कहते हैं परंतु ये है ह्यूमन वृक्ष, मनुष्यों को अपने वृक्ष का पता ही नहीं पड़ता है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का पता ही नहीं है। कहते भी है गॉड इज क्रिएटर, परमात्मा रचयिता है, तो जरूर चैतन्य है ना, वो बीज रूप है परंतु रचयिता है, तो जरूर चैतन्य है ना। बाप सत्य है, चैतन्य है, फिर ज्ञान का सागर है, उनमें कौन सा ज्ञान है ये भी कोई नहीं समझते। कौन सा ज्ञान है परमात्मा में, रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, बाबा कहते ये भी नहीं समझते हैं। बाप ही बीज रूप है, चैतन्य है, उनसे ही सारी रचना होती है, तो बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को अपने झाड़ का पता ही नहीं है, ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है परंतु मनुष्यों को इस झाड़ का पता ही नहीं है। और झाड़ों को तो अच्छी रीति जानते हैं, झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता, उन झाड़ों का भी बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना कि मैं कैसे बढ़ता हूँ, परंतु वो तो है जड़। तो अब तुम बच्चे ही रचयिता और रचना के राज को जानते हो, ये सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना, भगवान चैतन्य है तो जरूर बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया गया है, हीरे समान है मनुष्य का जीवन। तो बाबा कहते हैं मनुष्य का तन सबसे ऊंच अमूल्य गाया गया है, इनका मूल्य कथन नहीं कर सकते हैं। मनुष्य का जन्म मूल्य का मूल्य कथन नहीं कर सकते हैं। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं, तुम रूप भी हो बसंत भी हो, ज्योति बिंदु रूप हो और फिर ज्ञान स्वरूप हो तो बसंत हो, तुम रूप भी हो बसंत भी हो। बाप है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको रत्न मिलते हैं, ये ज्ञान रत्न है, जिन रत्नों से वो रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते हैं। ये जितने ज्ञान रत्न इकट्ठे करेंगे उतनी बाबा कहते हैं फिर भविष्य में ये रत्न तुम्हारे वो हीरे मोती वो रत्न बन जाएंगे। लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न होंगे, सोचो तो सही, इनका तो कितना पूरा रत्नों का भंडार होगा ना, जो जब चाहो जो जेवर चाहो वो पहन सके। तो लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न है, हीरे जवाहरातों के तो हीरे जवाहरों के तो हीरे जवाहरों के महलों में रहते। कौन? लक्ष्मी नारायण, तो उनके महल ही हीरे जवाहरातों से जड़े हैं, तो उनके पास कितने हीरे जवाहरात होंगे। नाम ही है स्वर्ग जिसके तुम मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाते हैं। कई बार उसे होता है सचमुच, इतनी गरीब ने 1 रुपए की लॉटरी ली और 1 करोड़ उसको मिला, मानो लॉटरी की प्राइज मिली, तो एकदम पागल हो गया। तो कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिलती है तो पागल हो जाती है ना। बाप भी कहते हैं तुमको, क्या बाबा कहते हैं तुमको, विश्व की बादशाही मिलती है तो ये माया कितना अपोजिशन करती है। इतनी प्राप्ति तुमको होती है लेकिन माया तुमको प्राप्ति करने नहीं देती ना, माया कितना अपोजिशन करती है। तुमको आगे चल पता पड़ेगा, अभी क्या पता पड़ेगा, माया अपोजिशन जो करती है उसका अभी इतना पता नहीं चलता। बाबा कहते आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है। उस समय तो बहुत थोड़े बच्चे थे तो, और बिल्कुल बाबा मम्मा के साथ तो एकदम पक्के थे, इतना नहीं कोई टूटते थे। लेकिन अभी समझते ना, बाबा नहीं, मम्मा नहीं, दादियां नहीं, ये ना ये, अभी पता नहीं क्या होगा आगे, तो फिर माया के वश हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तुमको आगे चल पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा लेती है। हम थोड़ी कहेंगे नहीं है बाबा मम्मा दादियां दीदियां, सब है, बाबा का कार्य चल रहा है और कौन करा रहा है, भगवान ही तो करा रहा है। एकदम खा लेती है। तुमने सर्प को देखा है ना, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप करते हैं, एकदम अंदर में ले लेते हैं, जैसे गज को ग्राह हप करते हैं, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। हुआ था यहाँ उस समय, ये सीमेंट का नहीं था रोड ना, जो आंगन है ये सब सीमेंट का नहीं था, रेती थी, तो कैसे एक सांप आ गया, बहुत बड़ा सांप आ गया, लेकिन वो चल नहीं पा रहा था, तो चल नहीं पा रहा था, उसने पूरा मेंढक खा लिया था, इतना बड़ा मेंढक अंदर में खा लिया था, माना हप कर लिया था, तो चल ही नहीं पा रहा था, उसका पेट इतना बड़ा, और वो सांप तो पतला होगा लेकिन चल नहीं वो पा रहा था। तो बाबा ने कहा कि अभी इस सांप को निकालो। अब कैसे निकले, तो वो निकालने की कोशिश की लेकिन वो चल ही नहीं पा रहा है। तो बाबा ने क्या कहा, एक लकड़ी लो, अब मारो नहीं उसको, एक लकड़ी लो और धीरे 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 वो जो इसने खाया है वो उसको निकालो, मुंह तक लाओ। और सचमुच वो उसको निकाला, जिंदा ही था, और वो मुंह तक आया और निकल गया और कूद गया, और तब वो ये सांप शांत हुआ और अपने आप चला गया। तो इसीलिए बाबा ने कहा मारो नहीं, मारो नहीं, परंतु वो इतना मेंढक पेट में तो वो चले कैसे। तो बाबा कहते हैं सर्प मेंढक को एकदम, तुमने, बाबा कहते तुमने सर्प को देखा है, मेंढक को कैसे पकड़ता है, जैसे गज को ग्राह हप करते हैं, सर्प मेंढक को एकदम सारे का सारा हप कर लेता है। माया भी ऐसी है, माया भी ऐसी हप कर लेती है पूरा, बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम खत्म कर देती है, जो फिर कभी बाप का नाम भी नहीं लेते, ऐसे खत्म कर लेती है, हप कर लेती है, जो वो बाबा का नाम भी नहीं लेते हैं। योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, सारा मदार योग बल पर है, जैसे सर्प मेंढक को हप करता है। फिर बाबा दूसरा देते हैं, वो माया हप करती है जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, अभी हम भी हप करते हैं, क्या हप करते हैं, बाबा कहते हैं बच्चों को जीते जी पकड़कर एकदम हप कर देती है, जो फिर बाबा का नाम भी नहीं लेते। अब बाबा हमारे से भेंट करते हैं, तो सारा मदार योग बल पर है, योग बल की ताकत तुम्हारे में बहुत कम है, फिर बाबा कहते जब योग बल होगा तो जैसे सर्प मेंढक को हप करता है, तुम बच्चे भी सारी बादशाही को हप करते हो। कैसे बाबा ने भेंट किया, तुम भी सारी बादशाही हप करते हो, सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेते हो। बाबा कहा तो सारे विश्व की बादशाही मिल गई, तुम सेकंड में विश्व की बादशाही हप कर लेते हो। तो बाप कितना सहज युक्ति बताते हैं, कोई हथियार आदि नहीं है, किसी से लड़ाई नहीं करते हैं, कोई हथियार आदि नहीं है। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए हैं। तो तुम बच्चे इस समय कहते हो, अब क्या कहते हैं हम बच्चे, तुम बच्चे इस समय कहते हो हम क्या से क्या बन गए हैं, सचमुच ज्ञान नहीं था तो क्या थे, और अभी बाबा के बने हैं तो क्या से क्या बन गए हैं। तो हम क्या से क्या बन गए थे और हाँ फिर अभी हम क्या से क्या बने हैं, तो क्या बन गए थे फिर क्या बने हैं। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे इस समय कहते हम क्या से क्या बन गए थे, जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर, सतयुग में ऐसे बन जाएंगे इतने ऊंचे तो वो भी हम थे, फिर क्या से क्या बन गए, फिर हम क्या से क्या फिर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जो चाहे सो कहो, हम ऐसे थे जरूर, भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते है ना, देवताएं थे तो गुणवान थे, अभी मनुष्य है वो भी तमो प्रधान है तो अवगुण है। तो भल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते है ना, देवताओं में दैवी गुण है इसीलिए उन्हों की महिमा गाते हैं, सर्व गुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण। हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, अपने लिए कहते हैं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, किसी में भी दैवी गुण नहीं है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, अब उनको नहीं जाना तो गुण कहां से आएंगे, उनको ही नहीं जानते हैं, इसीलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। भगवान से प्रीत विपरीत बुद्धि है तो गुणों से भी विपरीत बुद्धि है, सबसे विपरीत बुद्धि है, इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है, इनको कहा जाता है विनाश काल। कौन सा काल, कौन सा समय चल रहा है इस समय, हाँ, धर्म ग्लानी का समय, महाभारत का समय, विनाश काल, विनाश का समय, ये है अंतिम विनाश, अंतिम लड़ाई। दो लड़ाइयां तो हो चुकी है, उसमें भी लाखों लोग मारे गए थे, लेकिन वो अंतिम लड़ाई नहीं थी, फिर दुनिया खड़ी हो गई। अभी है अंतिम लड़ाई, अभी है अंतिम विनाश, फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर, अभी विपरीत बुद्धि तो है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना, विपरीत बुद्धि का तो विनाश होना ही है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं, मरते ही रहते हैं, रोज मरने का समाचार तो आता ही है, मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना, आज भारत का ये हाल है, कल भारत क्या होगा, गीत भी ऐसे बनाई है ना, तो आज भारत का ये हाल है, कल भारत क्या होगा, आज ये है कल तुम कहाँ होंगे, सोचो कल कहाँ होंगे, आज यहाँ हैं और कल नई दुनिया में होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहरात आदि होते हैं, भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है, भक्ति में इतना है मंदिरों में, तो बाबा कहते हैं सतयुग में क्या नहीं होगा। तो भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी होता है। सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी होगा, वहां तो कंपटीशन होगी ना। द्वापर युग में भी सबके पास हीरे जवाहरात बहुत होंगे, तो एक राजा ने बनाया, दूसरा राजा कहेगा मैं भी कोई कम हूं क्या, मैं भी बनाऊंगा। तो कितने ऐसे मंदिर होंगे हीरे जवाहरातों से जुड़े हुए। तो बाबा कहते हैं सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी होगा, एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है। हाँ, इतना लूटा होगा, मानो कितनी बड़ी बात हुई होगी जो अभी तक उसका इतिहास में आता है। इतिहास की किताबों में सोमनाथ का कितना वर्णन आता है। तो बाबा कहते हैं फिर बैठ अपना यादगार बनाया है, तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं। हाँ, अभी तो बाबा कहते हैं ना, चलो कोई बनाते भी हैं तो दीवारों में तो पत्थर ही लगाते हैं। इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी? पत्थरों से ही तो बनाते, ईंटों से बनाते मकान, जो भी अभी इनकी क्या वैल्यू होगी? इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है, उनकी भेंट में पत्थरों का दाम क्या होगा? इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है? अब बाबा जौहरी था तो बाबा को जवाहरातों की क्या वैल्यू है, कितना दाम है, बाबा कहते सब उनको पता था। बाबा जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था। रत्ती पता है कितनी होती है? हाँ, वो एक ग्राम का भी कहते नौ रत्ती एक ग्राम बनता है, 9.5 रत्ती एक ग्राम बनता है। तो एक ग्राम कितना, और उसकी अगर 9 उसकी उनके टुकड़े करो तो इतनी एक रत्ती कितनी रत्ती होगी। तो बाबा कहते हैं एक रत्ती का हीरा होता था, 90 रुपया रत्ती। उस समय 90 रुपया वो रत्ती का क्या दाम था। अभी तो उसकी कीमत 1000 रुपया है, एक रत्ती की भी कीमत 1000 रुपया है। मिलते भी नहीं है हीरे, इतने सच्चे हीरे कहाँ आजकल मिलते हैं, बहुत वैल्यू बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सत्युग के आगे ये कुछ भी नहीं है। भले अभी है बहुत धन पश्चिमी दुनिया में, जो विकसित दुनिया है, विकसित देश है, उनमें तो बहुत धन है, लेकिन बाबा कहते हैं सत्युग के आगे वो कुछ भी नहीं है। अभी बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। तो बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, भगवान कितना समय बैठा रहेगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या? कलयुग में भगवान को क्या मजा आएगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या? मैं तो न सुखी न दुखी होता हूं, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की, बस ड्यूटी पूरी हुई और मैं गया, सबको ले जाऊंगा, तो ड्यूटी बजाने में यहां कब तक बैठा रहूंगा। मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की, तुम ये थे अब ये बन गए हो, फिर तुमको ऐसा ऊंच बनाता हूं। तुम जानते हो हम फिर वो बनने वाले हैं। अब तुमको ये समझ आई है हम इस दैवी घराने के भांति थे। याद आता है, स्मृति आती है ना, हम इस दैवी घराने के भांति थे, राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गंवाई, फिर और आने लगे। हमने राजाई गंवाई द्वापर युग में, और धर्म स्थापक आए और फिर वो राजाई लेने लगे। अब ये चक्र पूरा होता है, अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, ये लड़ाई है ही विनाश की। इस अंतिम लड़ाई के बाद इस लड़ाई में विनाश होगा, फिर तो ये कलयुगी दुनिया रहेगी नहीं। ये लड़ाई है ही विनाश की, उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे। अब बाबा अंतर बताते, जो पश्चिमी दुनिया में मरेंगे वो तो एटॉमिक बॉम्ब से मरेंगे, एटॉम बॉम्ब से एक दो पर छोड़ेंगे, पर भारत में गृह युद्ध होगा, तो गृह युद्ध तो बाबा कहते उसमें तो खून की नदियां बहेगी, क्योंकि गृह युद्ध में तो खून बहेगा ना। वहां पर पश्चिमी दुनिया में एक बॉम्ब गिराया, आग लगी, खत्म। परंतु यहाँ तो बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा, अंत यहाँ का कोई बहुत सुखाला नहीं होगा। वहां तो फिर भी सुखाला होगा, गए बस एक धक से खत्म, आग लगी और वो एटम बम गिरा, आग लगी और खत्म। तो बाबा कहते हैं ये लड़ाई है ही, ये लड़ाई है विनाश की, उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, हॉस्पिटल आदि भी नहीं होंगे। तो भाई कोई मरीज वो हो गया, जख्मी हुआ, उसको ले जाओ हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल भी नहीं होंगे, कोई ले जाने वाले भी नहीं होंगे, कोई दिया जलाने वाला भी नहीं होगा। तो हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे, कौन बेड सेवा करेंगे और रोएंगे, फिर कोई रोएंगे भी नहीं, कौन बेड सेवा करेंगे और रोएंगे। वहां तो ये रस्म ही नहीं है, उनकी मौत सहज होती है, उनकी मौत सहज होती है पश्चिमी दुनिया की। यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं, यहाँ दुखी होकर मरते हैं, क्योंकि तुमने सुख भी बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। अब सिविल वॉर होगा, गृह युद्ध होगा, तो आप समझ सकते हैं ना कैसे लोग मरेंगे, चिचला चिचला करके रक्त की नदियां बहेगी। और बाबा ने ये विनाश देखा ना साक्षात्कार में, तीनों प्रकार का विनाश, अणु युद्ध का भी विनाश और गृह युद्ध का भी विनाश और प्राकृतिक आपदाओं का भी विनाश। तो उससे वो देख करके बाबा को इतना वैराग आ गया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि तुमने सुख भी बहुत उठाया है तो दुख भी तुमको देखना है। खून की नदियां यहां बहेगी, खून की नदियां यहां ही बहेगी। वो समझते हैं कि ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी। चलो अभी एक दो को धमकी दे रहे हैं, परंतु ऐसे ऐसे गिराएंगे तो नहीं ना एटम बॉम्ब, तो फिर शांत हो जाएगी। क्योंकि उनको ये भी डर है कि अगर हम एटम बॉम्ब गिराएंगे तो फिर हमारे ऊपर भी एटम बॉम्ब गिरेगा, तो उनको हम मारेंगे कि हम भी मर जाएंगे, इसलिए वो अभी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं क्यों नहीं कर रहे, अंत में तो करेंगे, पर अभी क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बच्चे तैयार नहीं है, स्थापना करने वाले पूरे तैयार नहीं है, इसीलिए वो लड़ाई भी नहीं हो रही है। तो बाबा कहते हैं वो समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, परंतु शांत तो होनी नहीं है, एक बार हुआ हाँ कुछ, तो बाबा कहते हैं फिर शांत होनी नहीं है। मिरुआ मौत मलूक का शिकार, तुम देवता बनते हो फिर कलयुगी छी छी सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है भगवानो वाच, विनाश भी देखो स्थापना भी देखो। विनाश गीता में भी है भगवानो वाच, अर्जुन को कहा ना विनाश भी देखो तो स्थापना भी देखो। साक्षात्कार हुआ ना, ये साक्षात्कार सब अंत में होंगे, फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे। अब ये तो लक्ष्मी बन जाएगी, ये तो नारायण बन जाएगा, और मैं तो दास बनूंगा दासी बनूंगा, अपना पता तो चलेगा। फिर बाबा कहते उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे और नसीब कूटेंगे। नसीब कूटना कितना बुरा है, नसीब भी कूटेंगे, लेकिन कर क्या सकेंगे, ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है, स्मृति तो आती है ना। साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती है, उस समय साक्षात्कार करेंगे क्या क्या तुमने पाप किए, क्या क्या तुम्हारे अंदर कमजोरी है। तो साक्षात्कार बिगर किसको सजा नहीं मिल सकती है, ट्रिब्यूनल बैठती है ना। अच्छा ट्रिब्यूनल बैठेगी, अंत में सजाएं जिनको मिलनी है वो डिसाइड करेंगे, जैसे जजों का ट्रिब्यूनल होता है, बेंच होते, तो वो फाइनल मिल करके डिसाइड करते कि इनको क्या सजा दी जाए। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला स्वयं में ज्ञान रत्न धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरा, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। वरदान, सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। पहुंच जाओ उड़ती कला द्वारा बाबा के पास तो बाबा कहते हैं कोई भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया भी नहीं आ सकती है। स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। कुछ भी हो रहा है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। आज 12 तारीख है, 12 तारीख संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। ये वरदान है संतुष्टता। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां हैं। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। आप ब्राह्मणों का गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वरदाता दाता का भंडार भरपूर है, इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? पूछो अपने आप से, असंतुष्टता क्यों? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। एनी डबल फॉरेनर्स हियर?